सर्वथोक्षी चिरोर्मुखम् सर्वथा श्रुतिमा लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति. Everywhere are his hands and legs, his eyes and faces, and he hears everything. In this way, the super soul exists.
ये परमात्मा के जो आँख और जो हाथ है वो सब जगह हैं और वो सब जगह पर व्याप्त हैं, इस तरह से उनका अस्तित्व है.
We are reading this evening from the 14th verse of the 13th chapter of Sri Bhagavad Gita.
आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं.
In this particular sloka, Krishna is revealing to us his transcendental nature of how he exists everywhere, in everything, and in everyone.
इस श्लोक में वो बतला रहे हैं कि वो किस तरह से सब जगह पर हर एक चीज में और हर एक व्यक्ति में मौजूद हैं.
It is said, Parashya Shaktir Vavadaiva Shruyate, that the Supreme Absolute Truth has multifarious energies, and through his energies he is all pervading.
ऐसा बताया जाता है कि भगवान के अनेक शक्ति हैं और अपने शक्ति के द्वारा वो सर्वव्यापक हैं.
ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदया पूर्णम एवावशिष्यते. That the Supreme Absolute Truth is perfect and complete, and all emanations that are coming from him are also perfect and complete, and everything within the existence is emanating from Krishna.
तो श्री कृष्ण जो भगवान है वो पूर्ण है और उनसे आने वाले हर एक चीज वो भी पूर्ण है और इस सिस्टम में जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण से ही आ रहा है.
अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तित इति मत्वा भजन्ते मम बूढ़ भाव समन्विता. Krishna says that I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me.
Shri Krishna Bhagwan bolte hain ki sare adhyatmik aur bhautik jagat ka astitva main hi hoon aur sab kuch mere se hi aa raha hai.
The wise who know this perfectly engage in my loving service and worship me with all their hearts.
To jo buddhiman vyakti hain wo ye jante hain, wo meri bhakti mein lagte hain aur pure hriday ke sath meri seva karte hain.
Some people are under the misconception that because Krishna says he is all pervading, that means everything is God and everyone is God.
कुछ लोगों के अंदर एक गलत धारणा होती है क्योंकि कृष्ण बोलते हैं सर्वव्यापक हैं तो सोचते हैं कि हर एक चीज जो है भगवान है.
But Krishna doesn't say that everything is me. He says everything is emanating from me.
लेकिन कृष्ण ये नहीं बोलते कि सब कुछ मैं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से आ रहा है.
The simple example is the sun in the sky.
एक सरल उदाहरण है जो आकाश में सूर्य दिखता है.
Through the power of the energy of the sun, sunlight appears.
ये जो है सूर्य की शक्ति से ही जो है सूर्य का प्रकाश आता है.
Sunlight is composed of unlimited sun rays.
और इस सूर्य का प्रकाश जो है अनंत किरणों के द्वारा बनाया गया है.
Each sun ray is individual and unique.
और हर एक जो किरण है वो अपने आप में अलग से है.
But because they are all emanating from the sun, they have the same quality as the sun.
क्योंकि वो सूर्य से आ रहे हैं, इसके अंदर सूर्य के गुण हैं.
They give heat and they give light.
वो प्रकाश देते हैं और गर्मी देते हैं.
And although the sun is situated in a particular place in the sky, through the sunlight emanating from it, the sun is all pervading.
और हालांकि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा वो सर्वव्यापक है.
It is everywhere within this entire universe. The sun rays.
इस ब्रह्मांड में सब जगह पर सूर्य की किरण फैली हुई हैं.
But yet the sun remains uniquely the source.
और फिर भी सूर्य जो अलग से ही जो है उन सबका स्रोत रहता है.
So through the various energies of the Lord, he is all pervading.
और अपने शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापक हैं.
But also through his various incarnations or expansions, he is all pervading.
और अपने अवतारों के द्वारा, अपने विस्तारित स्वरूप के द्वारा भी वो सर्वव्यापक हैं.
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्रमयन सर्वभूतानां यंत्र रुदने मायया. Krishna says that I am situated in every living being's heart.
श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ.
The Supreme Lord of Vaikuntha expands himself as the Paramatma to perfectly, personally sit as the witness within every person's heart.
जो परम भगवान है वो परमात्मा के रूप में विस्तारित होते हैं इसलिए कि हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करने के लिए.
And it is also explained that the same Paramatma expands himself to personally and consciously reside in and between each and every atom.
और वही परमात्मा फिर विस्तारित स्वरूप होते हैं जिससे कि हर एक अणु में और दो अणुओं के बीच में निवास करते हैं.
This is the inconceivable quality of Krishna.
ये भगवान की अचिंत्य गुण बतलाया जाता है.
That although he is situated in the spiritual world as Gopinath, the lord and lover of the gopis, as Rasa Bihari, the enjoyer of the sweetest loving exchanges with his devotees, through his expansions, he is personally witnessing everything that exists.
ये भगवान की विशेषता है कि हालांकि गोपीनाथ के रूप में वो गोपियों के स्वामी हैं और रास बिहारी के रूप में वो आनंद प्रदान करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने जो है धाम में निवास करते हैं.
And it is also explained that that supreme source of all expansions, Krishna, he is personally, unlimitedly aware of everything.
और वही भगवान जो है व्यक्तिगत रूप में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं.
Lord Brahma has prayed in the Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Saravakarana Karanam, that the supreme controller of all controllers is Krishna, and his body is Sachit Ananda. He has a form, a Vigraha. He is not ultimately formless. To say that the Lord is formless is limiting him. Because we have form, why cannot the Lord have what we have?
तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान जो है परमेश्वर हैं उनका सच्चिदानंद विग्रह है उनका रूप है अगर हमारे अंदर रूप है तो भगवान में रूप कैसे नहीं है ये बोलना गलत है कि भगवान का रूप नहीं है.
But Krishna's form is unlimited.
लेकिन भगवान का रूप असीमित है.
It is composed of spiritual elements. Sachit Ananda.
वो आध्यात्मिक तत्वों का बनाया गया है जो कि सच्चिद आनंद कहे जाते हैं.
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पन्ति. It is said in Brahma Samhita that each and every one of his limbs can perform the service of every other part.
ऐसा बताया जाता है ब्रह्म संहिता में कि उनका हर एक अंग जो है दूसरे अंग का कार्य भी कर सकता है.
Krishna has beautiful lotus-like eyes.
भगवान के सुंदर कमल नयन हैं.
In the spiritual world, those eyes, when they cast their merciful glance upon anyone, that person's heart melts with ecstatic love.
अध्यात्मिक जगत में जब वो अपनी नज़र किसी पर डालते हैं तो वो उसका हृदय जो है भगवत प्रेम में जो विह्वल हो जाता है.
His eyes are so beautiful that simply through his glance he can impregnate ecstatic love in anyone's heart.
उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि सिर्फ उनकी नज़र के द्वारा वो व्यक्ति में भगवत प्रेम जो है पैदा कर सकते हैं.
And through a mere expansion of Krishna, Mahavishnu, through his mere glance, he creates the entire cosmic manifestation.
और उनके एक विस्तारित स्वरूप महाविष्णु हैं उनकी नज़र के द्वारा जो है वो पूरे सृष्टि की रचना कर लेते हैं.
And with his eyes, he sees everything and everyone, everywhere, at all times.
और वो अपनी आँखों से हर एक चीज़ को हर एक व्यक्ति को सब जगह पर सब समय देखते हैं.
And similarly, with his hands, he can accept our offerings anywhere at any time.
इसी तरह से वो हमारे अपने हाथों के द्वारा कहीं से भी कहां पर भी हमारा भोग स्वीकार कर सकते हैं.
This is the transcendental quality of Krishna.
ये श्री कृष्ण के दिव्य गुण है.
But in the Paramatma feature, he is personally witnessing our every act, our every word and our every thought.
परमात्मा के स्वरूप में वो हमारे हर एक विचार को हर एक शब्द को और हर एक कार्य के साक्षी हैं.
And for a devotee, we should know that ultimately our spiritual advancement is not dependent on what other people see what we do.
हमको ये समझना चाहिए भक्त को कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति इस पर निर्भर नहीं है कि दूसरे लोग क्या देखते हैं हम क्या कर रहे हैं.
Our spiritual advancement is depending on what Krishna within our hearts is seeing and hearing and feeling.
हमारा आध्यात्मिक प्रगति इस पर निर्भर है कि क्या जो हृदय में भगवान है वो क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं क्या सुन रहे हैं.
You can fool so many people but you can never fool Krishna.
आप बहुत लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन कृष्णा को नहीं बेवकूफ बना सकते.
If you, whatever way you approach Krishna, he rewards you accordingly.
जिस भावना से आप कृष्णा के पास आते हैं उसी तरह से भगवान व्यवहार करते हैं.
If you are honest with Krishna, he will be honest with you.
अगर आप श्री कृष्ण के प्रति ईमानदार हैं तो श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति ईमानदार.
If you try to cheat Krishna, he will definitely cheat you.
अगर आप श्री कृष्ण को धोखा देने का प्रयास करोगे तो वो निश्चित रूप से आपको धोखा दे देंगे.
And he is the supreme in every quality.
और वो हर एक गुण में सर्वश्रेष्ठ हैं.
He is the supreme lover.
वो सबसे श्रेष्ठ प्रेमी हैं.
He is the supreme most beautiful.
सबसे सुंदर हैं.
The supreme most powerful.
सबसे सुंदर शक्तिशाली हैं.
The supreme most famous.
सबसे ज्यादा यशस्वी हैं.
Supreme most learned.
सबसे बड़े विद्वान हैं.
Supreme most renounced.
सबसे बड़े वैरागी हैं.
Supreme most wealthy.
सबसे बड़े ऐश्वर्यशाली.
But he's also the supreme most cheater.
और वो सबसे बड़े धोखेबाज भी हैं.
You cannot cheat Krishna.
कृष्ण का धोखा नहीं दे सकते.
He is always victorious.
वो हमेशा विजयी रहते हैं.
In every situation.
हर स्थिति में.
When Krishna was only a child of 7 years old, the most powerful of the devatas, Indradev, he poured insurmountable rains upon Vrindavan.
जब श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे तो इंद्र ने बहुत ज़्यादा बरसात की वृंदावन में.
You know the story that the Brijabasis were performing Indra Puja and Krishna said, why should you waste your time worshipping this demigod Indra? Better you worship Govardhan Hill because Govardhan Hill is here in Vrindavan with us and is personally supplying so many nice grasses and waters to our cows.
श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों को बोले कि आप इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करो. वो यहीं पर हैं वृंदावन में और वो सबको जो है गौओं को जो घास दे रहे हैं.
सो ड्यूरिंग द गोवर्धन पूजा दे वर परफॉर्मिंग इट जस्ट एज कृष्ण एक्सप्लेन्ड. कृष्ण हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड एज गोवर्धन एंड एक्सेप्टेड ऑल ऑफ द ऑफरिंग्स दैट वर मेंट फॉर इंद्र.
और उस समय जो है जब वो इस तरह से गोवर्धन को पूजा अर्पण करने लगे तो स्वयं कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और सारे भोगों को उसने स्वीकार किया.
So Indra became very angry.
इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया.
This Krishna is cheating me.
ये कृष्ण मेरे को धोखा दे रहा है.
And he's just a little 7-year-old boy. Who is he to cheat the king of heaven?
और ये छोटा 7 साल का बच्चा ये कौन होता है कि जो स्वर्ग के राजा को धोखा देगा?
I will show him who's the bigger cheater.
मैं इसको दिखाता हूँ कि कौन से कौन बड़ा धोखेबाज है.
So he just didn't send regular rains, but he called for the Samvartaka clouds.
उसने जो है साधारण बरसात नहीं की लेकिन संवर्तक बादलों को बुलाया.
These samvartaka clouds are the clouds that only come at one time, at the time of the dissolution or the destruction of the whole universe.
ये बादल उस समय आते हैं जब पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला होता है.
These clouds, within a matter of hours, they pour so much rain that they fill the whole world with so much water that the earth planet becomes one gigantic ocean.
और वो इतनी ज्यादा बरसात होती है कि पूरा जो धरती का लोक है एक बहुत बड़ा सागर बन जाता है.
All life is destroyed on the land.
सारा जीवन जो है अंत हो जाता है.
And then the water pours even more and covers half of the entire universe.
और इतना ज्यादा पानी होता है कि पूरा आधा ब्रह्मांड को भर देता है पानी से.
All the lower and middle planets up till Maharloka is completely submerged in the waters of these rains.
सब नीचे के और मध्य के लोक महालोक तक पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाते हैं.
So all of these mighty forces of rain clouds were aiming all of their strength at the little tiny village of Brajbhumi.
और ये सारे बादल जो प्रलय के हैं वो अपनी पूरी शक्ति जो है ये छोटे से गांव वृंदावन पर कर रहे थे.
And there was so much rain and so much thunder and so much lightning and instantly the land was just filling up with water.
और इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, इतने बादल थे और पूरा जो है धरती जो पानी से भर रहा था.
So the Brijbasis, they took the cows in front of them.
ब्रजवासी जो है गायों को अपने आगे ले गए.
Because they knew Krishna is very fond of cows.
क्योंकि वो जानते थे कृष्ण को गौएं बहुत पसंद हैं.
And they said that these rains, not only will they kill us, but they will kill your cows. So please protect us.
बोले कि देखो ये जो बरसात है हमको नहीं मारेंगी सिर्फ गायों को मारेगी, इसलिए कृपया इनकी रक्षा करो.
सो गोविंद गोपाल द प्रोटेक्टर एंड गिवर ऑफ प्लेजर टू द काउज एंड टू द डिवोटीज ही लिफ्टेड द गोवर्धन हिल विद द लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड.
छोटे से गोविंद गोपाल ने अपने छोटे नन्हे से हाथ से उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया.
एंड ही हेल्ड दैट मैसिव माउंटेन फॉर 7 days एंड 7 nights.
और 7 दिन और 7 रात्रि को उस महान पर्वत को उन्होंने उठाए रखा.
एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन इवन टच्ड
any of the residents of Vrindavan who were standing under that hill as if it were an umbrella.
और वो ब्रजवासी जो है वो गोवर्धन पर्वत के नीचे ऐसे खड़े हो गए मानो छतरी हो और एक बूंद भी पानी उनको स्पर्श भी नहीं कर पाया.
While they were standing under the hill, we may ask, what did they eat and what did they drink?
कोई पूछेगा कि जब वो खड़े थे सात दिन तो क्या खाया क्या पिया?
The answer was, they were drinking through their eyes the beauty of Krishna.
इसका उत्तर ये है कि अपने आँखों के द्वारा श्री कृष्ण की सुंदरता को पी रहे थे.
As he was standing in his beautiful form of Girivanadhari, it was so charming that they didn't even blink their eyes practically for 7 days.
तो उतनी ज़्यादा जो है उतना सुंदर उनका रूप था कि वो बिल्कुल अटक दृष्टि से देख रहे थे.
All the cows, the bulls, the calves, the parrots, the peacocks, the monkeys, and all the gopis and gopas, they just stood there, completely intoxicated with love, seeing the beautiful form of their tender-limbed, small little friend and child holding up this gigantic mountain.
इतने सारे गाय और बछड़े और सब ग्वाले और गोपियाँ सात दिन तक इस छोटे नन्हे से बालक के रूप को मनोहर रूप से देखते रहे.
In this way, they were so satisfied that they simply completely forgot that they were these bodies, and they completely forgot about eating or sleeping or drinking or anything else.
इस तरह से वो पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद वो ये भूल गए कि वो शरीर हैं और खाना और सोना बिल्कुल भूल गए.
In this way, Krishna completely fulfilled all of their desires.
इस तरह से श्री कृष्णा ने उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया.
And what desire should we aspire for in this world?
इस दुनिया में हमें क्या इच्छा करनी चाहिए?
Simply to have Krishna.
सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना है.
If we desire wealth, Krishna will give us wealth.
हम संपत्ति चाहेंगे तो कृष्ण संपत्ति.
Sooner or later, he'll give it.
या जल्दी देंगे या देर में देंगे.
If we desire fame, sooner or later, he'll give it.
अगर यश चाहेंगे तो वो भी भगवान दे देंगे.
If we desire some material expertise in some particular subject or art, he will give it sometime or other.
कोई कला या कोई दक्षता हम चाहेंगे तो वो भी भगवान दे देंगे.
If we even desire great powers or liberation, he will give.
अगर हम बहुत शक्ति या मुक्ति चाहेंगे तो भी भगवान वो भी दे देंगे.
मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि सुखी महामुनि. But Bhagavatam explains that none of these things will make us happy.
भागवतम समझाती है कि कोई भी इनमें से चीज हमको संतुष्ट नहीं कर सकती.
Only when Krishna gives us himself do we become blissful.
जब कृष्ण अपने आप को हमें दे देते हैं तभी हम आनंददायक बन जाते हैं.
So the Brijvasis, they didn't care for food or sleep. They didn't even care for a home. They were just standing under a mountain. But because they had Krishna, they were completely satisfied.
अब ब्रजवासी को न खाने की जगह थी न सो रहे थे लेकिन क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण थे इसलिए वो पूर्णतया संतुष्ट थे.
But Indra was not completely satisfied.
लेकिन इंद्र पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे.
He was in complete distress.
वो पूर्ण रूप से दुखी थे.
Because he realized that this little Gopal was the supreme personality of Godhead.
इंद्र को मालूम पड़ गया कि छोटा सा गोपाल जो है ये भगवान है.
And he wanted to cheat Krishna by killing him and killing all of his family members.
वो कृष्ण को धोखा देना चाहते थे उनको मारकर और सारे जो उनके रिश्तेदार हैं उनको मारकर.
But in the end, Krishna killed his false prestige.
लेकिन अंत में कृष्ण ने उनका मिथ्या अभिमान नाश कर दिया.
Indra has his thunderbolt, which can penetrate mountain tops and make it into powder.
इंद्र के पास ऐसा वज्र है कि बड़े बड़े पर्वतों को वो चकनाचूर कर देगा.
But Krishna's beauty is so many billions of times bigger than Indra's thunderbolt that it made the mountain of his false pride into powder, into nothing.
इन कृष्ण की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उसने जो उसके अंदर जो अभिमान था पर्वत वो उसको बिल्कुल पाउडर कर दिया.
So we should know that whoever we are, however powerful, we can never cheat Krishna.
हमें समझ जाएगी हम कितने भी शक्तिशाली हों हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते.
In fact, Krishna performed this whole pastime because although Indra was enjoying such incredible success being the Lord of the heavens and the Lord of all the other gods, Krishna within his heart as Paramatma understood that he was proud.
भगवान श्री कृष्ण ने लीला इसीलिए की क्योंकि हालांकि इंद्र स्वर्ग के राजा थे हृदय के रूप में रहने से भगवान को मालूम था कि इसको अभिमान है.
So it was his mercy toward Indra to cheat him of this pride.
तो ये इंद्र के प्रति उनकी कृपा थी कि उनका जो अभिमान है उसको ले छीन लिया.
Krishna will never cheat us of anything good.
Krishna hamare se koi bhi cheez aisi chheenenge nahi jo ki achhi hai hamare liye.
He will cheat us by taking away all the inauspiciousness in our hearts.
Wo hame dhoka denge ki sare hamare hriday ke amangalkari cheezon ko chheen lenge.
We are so attached to the inauspiciousness in our heart that sometimes it's very painful.
Hum in amangalkari cheezon se itne aasakt hain ki kabhi kabhi wo bahut darddayak ho jata hai.
We really think, Krishna, why are you doing this to me?
Hum sochte hain ki Krishna tum ye kyon kar rahe ho?
I'm such a nice devotee.
Main kitna acha bhakt hoon.
But we have to have faith that whatever he does is for our good.
Lekin humko shraddha honi chahiye ki wo jo kuch bhi karte hain wo hamare acche ke liye hai.
And we should also know that we want to behave in a way that is exemplary for other devotees to be inspired by.
Aur hame ye malum hona chahiye ki hame aisa vyavhar karna chahiye ki jo dusre bhakt hain unko bhi prerna prapt ho.
So therefore it is necessary that we give an external form to our devotion through our activities.
Isliye ye avashyak hai ki hum apne jo bhakti ko ek bahariya roop pradan kare apne karyon ke dwara.
But at the same time we must be doing it with the proper motive.
Lekin fir bhi ye bhi mahatvapurna hai ki hum acche uddeshya se aisa kare.
We must be doing it in a mood of service.
Hame seva bhavana se ye karna chahiye.
We must be doing it in a mood of compassion.
Usko ek daya ki bhavana se karna.
And most of all humility.
Aur namrata ki bhavana se karna.
And then Krishna within our heart truly appreciates our endeavor.
Fir jo Krishna hriday mein sthit hai wo hamare prayason ki sarahana karte hain.
There is a story in the Bhakti Rasamrita Sindhu in which Srila Rupa Goswami explains that there was once a Brahmin who was living on the bank of a river.
Ek katha hai ki ek Brahmin tha jo ki nadi ke tat pe rehta tha.
I believe it was the river Godavari.
Wo Godavari ke tat par tha.
And this Brahmin, he was very poor.
Wo bahut gareeb Brahmin tha.
He would just sleep on the ground under a tree.
वो पेड़ के नीचे जो है जमीन पर सो जाते थे.
He really had absolutely nothing.
वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं था.
But he had bhakti.
लेकिन उनके पास भक्ति थी.
And he, the nature of bhakti is you always want to please Krishna.
भक्ति का स्वभाव है कि हमेशा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं.
You always want to give pleasure to his devotees.
उनके भक्तों को आनंद प्रदान करना.
So this Brahmin decided that he wanted to make a wonderful offering to Krishna.
उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान को एक सुंदर भोग अर्पण करना चाहता हूँ.
So he wanted to make all these offerings within his heart.
अपने हृदय में ही वो सब भोग लगाना चाहते थे.
And you know the mind is within your heart.
और आप जानते हैं कि जो मन है वो हृदय के अंदर स्थित है.
The brain is in your head.
ये दिमाग है वो सिर में है.
But the mind is in your heart.
लेकिन मन हृदय में है.
And the brain is just a very gross external apparatus by which the mind's impressions come on the physical plane.
ये जो दिमाग है वो तो एक खाली एक यंत्र की तरह है जिसके अंदर मन के जो विचार हैं वो सामने प्रकट होते हैं.
But the actual mind is intimately covering the atma within the core of our hearts.
लेकिन जो मन है वो हमारे हृदय की जो आत्मा है उसको ढक रहा है.
So manasa seva is the service of worshiping the Lord within our hearts.
मानस सेवा का अर्थ है कि भगवान को हृदय में आराधना करना.
Bhakti Vinod Thakur praised in one beautiful song, Mama Mana Man,
Mama Mana Mandire, Raho Nishid.
Krishna Murari, Sri Krishna Murari. Sing. Krishna Murari, Sri Krishna Murari. Everybody, Krishna Murari, Sri Krishna Murari. He's praying in the song that my dear Lord, please enter into the temple of my mind, of my heart.
ये प्रार्थना में बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपया मेरे हृदय के जो मंदिर है उसमें प्रवेश करें.
And in my heart I want to offer you my love in so many wonderful forms.
Main apne hriday mein aapko sundar roop mein kai cheezein arpan karna chahta hu.
So this Brahmin, he decided to collect in wonderful pots all the sacred waters from all the sacred rivers.
To ye Brahmin ne nischay kiya कि वो मटकों में सब पवित्र पानी जो है सब पवित्र नदियों से लेकर आएंगे.
And then he went and obtained wonderful, wonderful pure ingredients to cook the Lord a wonderful feast.
तो भगवान के लिए जो सुंदर सुंदर जो चीजें ले आए भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाने के लिए.
And part of the feast he cooked paramana or kheer.
और उसका एक भाग था परमान या खीर बनाई थी उन्होंने.
He was boiling rice with milk and sugar.
वो दूध को उबाल चावल को उबाल रहे थे दूध के साथ और शक्कर के साथ.
And he wanted to offer this wonderful kheer to the Lord in a very nice refreshing cold temperature.
और वो भगवान को बहुत ही ठंडे और अच्छे अच्छी तरह से भोग लगाना चाहते थे.
So he was thinking that in order to make sure it's nice and cold. Now he was sitting in meditation. It was a long meditation because he cooked it and he just let it sit for some long time and he was just waiting for it to become cool.
तो वो एक उनका लंबा ध्यान था क्योंकि उन्होंने पका लिया और बहुत देर तक रखा और वो इंतजार कर रहे थे कि ठंडा हुआ है या नहीं हुआ है और वो इस बात का जो है इंतजार कर रहे थे अभी.
So then he decided to touch it.
उन्होंने इससे किया कि ये पता करने के लिए यार छू के देख ले मैं.
And when he touched it, he found it was still burning hot.
और उन्हें छुआ तो देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म था वो.
So much that his finger became burnt red.
इतना ज़्यादा गर्म था कि उसकी उंगली जो है वो जल गई लाल हो गई.
And it hurt so much that it made his meditation finished.
और इतना ज़्यादा दर्द हुआ उसको कि उसका ध्यान है वो टूट गया.
And when he came out of the meditation, he looked at his finger and it was burnt red.
और जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी उंगली जो है वो लाल जल गई थी.
Meanwhile Krishna who was in Vaikuntha began to laugh.
उस समय कृष्ण जो वैकुंठ में थे वो हंसने लगे.
And Lakshmi Devi asked, "My dear Lord, why are you laughing?"
तो लक्ष्मी जी पूछी, "अरे भगवान आप हंस क्यों रहे हो?"
And he said, "You see that Brahmin way down there on the earth?"
बोले कि वो देखो वो नीचे वो ब्राह्मण है धरती के ऊपर उसको देख रहे हैं.
लक्ष्मी एंड नारायण कैन सी एवरीथिंग एनीवेयर नो प्रॉब्लम.
लक्ष्मी नारायण सब कुछ सब जगह देख सकते हैं.
सर यस यू सी हाउ ही हैज बर्नड हिज फिंगर.
तो देखते हैं कि हाँ ये तो उंगली इसकी जल गई है.
ही डिड दिस एज एन एक्ट ऑफ प्योर डिवोशन टू मी.
बोले ये उन्होंने एक भक्ति के स्वरूप में अर्पण
किया. देयरफॉर आई एम सो इररेसिस्टिबली अट्रैक्टेड बाय हिज लव दैट आई वांट टू ब्रिंग हिम बैक टू गॉडहेड एट दिस वेरी मोमेंट.
इसलिए मैं उनके प्रेम के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि इसी क्षण उनको वापस भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ.
So Krishna sent a Vaikuntha airship to the bank of the river where this Brahmin was sitting, and they said, "Please come to Vaikuntha."
तो कृष्ण ने जो हवाई जहाज भेजा जहाँ पर कि भगवान जहाँ पे वो ध्यान कर रहा था और उसने बोला कि चलो वैकुंठ चलो.
The Lord is so pleased with your service that he wants to take you back to God.
भगवान इतने प्रसन्न हुए आपकी सेवा से कि वो आपको वापस आपको धाम ले जाना चाहते हैं.
But what did he offer?
क्या उन्होंने अर्पण क्या किया?
He only offered his heart.
उन्होंने सिर्फ अपना हृदय अर्पण
किया. And his sincere and honest desire to please Krishna.
और उनका सच्चा इच्छा था कि सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना.
The sweet rice that he offered was not even made of milk or rice or sugar.
जिन्होंने खीर अर्पण किया उसमें दूध या शक्कर या चावल कुछ नहीं था.
He had no money for those things.
इन चीजों के लिए पैसे नहीं थे.
It was only made of his bhava.
उसके भाव भावना या प्रेम से बना हुआ था.
So if you have lots of money, do not think that Krishna will accept your mental sweet rice.
अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप ये नहीं सोच सकते कि कृष्ण मेरे मन की खीर अर्पण करेंगे.
You have to spend your money, buy the rice, the sugar and the milk and cook it nicely.
आपको पैसा खर्च करके चावल और दूध और शक्कर लेकर अच्छी तरह से पकाना पड़ेगा.
Don't think he will accept it just because of the expensive ingredients that are used.
आप ये मत सोचिए क्योंकि आपने बहुत महंगी चीजों का उपयोग किया है इसलिए भगवान इनको स्वीकार करेंगे.
He will accept your love.
वो आपके प्रेम को ही स्वीकार करेंगे.
But the manifestation of our love is on the physical, mental and spiritual level we will offer Krishna the best possible thing that we can.
और ये जो प्रेम का सबूत ये है कि मानसिक और भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर सर्वोत्तम चीज़ जो हमारे पास है वो हम अर्पण करेंगे.
पत्रम पुत्रम फलम तो यम यो में भक्त प्रयाच्यते. इफ यू हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ देन यू कैन बिल्ड कृष्ण अ ब्यूटीफुल टेंपल एंड ऑफर हिम हंड्रेड्स ऑफ ऑफरिंग्स.
अगर आपके पास बहुत सारे संपत्ति है तो कृष्ण के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाकर बहुत सारे व्यंजन अर्पण कर सकते हैं.
यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर पुअर.
और आप प्रसाद हजारों लोगों को बांट सकते हैं जो कि गरीब हैं.
एंड इफ यू डू इट नॉट विद अ डिजायर फॉर प्रेस्टीज बट विद अ जेन्युइन डिजायर टू हेल्प पीपल बिकम कृष्णा कॉन्शियस देन कृष्णा विल एक्सेप्ट योर ऑफरिंग एज समथिंग बियॉन्ड value of this world.
अगर आप इस भावना से बांध रहे हैं कि लोगों का कल्याण हो, मान सम्मान की इच्छा नहीं कर रहे, तो कृष्ण भगवान इस भोग को जो है ऐसे स्वीकार करेंगे किसी कोई कीमत ही नहीं है.
But if you do not have such facilities, if you just take a flower or a leaf, everyone can get a flower or a leaf from anywhere, and you offer it with love, Krishna will accept it with the same affection.
लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप एक पत्ता या फूल अर्पण कर लीजिए और प्रेम से अर्पण करिए तो भगवान जरूर यह स्वीकार करें.
But on the other hand, if we keep some secret hidden motive in our heart and appear to be a nice devotee, Krishna will also see that.
लेकिन अगर हम जो हमारे अंदर कोई ऐसे छुपे हुआ विचार है वो कृष्णा वो भी देख लेंगे.
In Chaitanya Mahaprabhu's Leela, there was a devotee of the named Ramdas Vishwas.
Chaitanya Mahaprabhu ki leela mein ek bhakt jiska naam tha Ramdas Vishwas.
And he was a Brahmin. He was constantly chanting the holy name of Lord Sri Ram.
Wo bar bar jo hai Brahmin the aur hamesha wo Ram ka naam jap kar rahe the.
And he had completely mastered by memory the entire Ramayan.
Puri Ramayan unhone kanthast kar li thi.
And he was always, whoever he met, wherever he was, practically day and night, he was chanting the names and glories of Sri Ram.
जिससे भी मिलते दिन रात और राम के गुणगान ही करते रहते थे.
And he did it in such a way that it appeared he had such love and devotion.
और उन्होंने इस ढंग से बताया कि ऐसा लगता था कि उनके अंदर बहुत प्रेम और भक्ति की भावना है.
Everyone considered him such a great saint.
हर व्यक्ति उनको एक महान संत मानते थे.
One day, Raghunath Bhatta Goswami, the son of Tapan Mishra, decided to leave his home and go to Jagannath Puri to take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
एक दिन तपन मिश्रा के सुपुत्र रघुनाथ भट्ट ने निश्चय किया कि वो अपने घर को छोड़कर जगन्नाथ पुरी में चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहते थे.
So on the way he met Ramdas Vishwas.
मार्ग में उनको रामदास विश्वास से भेंट हुई.
And Ramdas said, I want to go to Puri with you.
और रामदास ने कहा कि मैं भी आपके साथ पुरी जाना चाहता हूँ.
And Raghunath Bhatta said, oh, very nice. You can tell me the pastimes of Ram all the way to Jagannath Puri.
रघुनाथ भट्ट ने कहा तो बहुत अच्छा है, आप मुझे रामचंद्र जी की लीला जो है रास्ते में बताते जाइए.
He said, this will be my pleasure, but I have one condition.
तो उन्होंने बोला ये तो मैं ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है.
That you must allow me to carry all of your luggage on my head.
लेकिन आपका जो भी सामान है वो मैं अपने सर पे धारण करके जाऊंगा.
So Raghunath Bhatta said, there is no need for you to do this.
रघुनाथ भट्ट ने कहा आपके लिए ये करना आवश्यक नहीं है.
He said, no, you must allow me to do this.
तो वो बोले नहीं नहीं आपको ये देना ही होगा मुझे अवसर.
So he appeared so humble. All the way he was carrying Raghunath Bhatta's luggage on his head. And all the way he was chanting the names of Ram day and night without stopping.
वो दिखने में बहुत नम्र थे, वो उनका बोझा उठाए हुए थे और अथक रूप से हमेशा राम का नाम जाप कर रहे थे रास्ते में.
And when they arrived in Jagannath Puri, they went to the Gambhira, the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और जगन्नाथ पुरी में आने के बाद वो गंभीर में पहुंचे जहां पर चैतन्य महाप्रभु जी निवास कर रहे थे.
And Chaitanya Mahaprabhu very affectionately embraced and gave his special mercy to Raghunath Bhatta.
चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनको गले लगाया और रघुनाथ भट्ट को कृपा की.
But he completely ignored Ramdas.
लेकिन रामदास की उन्होंने बिल्कुल अवहेलना की.
And this was a great mystery. Why such an apparently great devotee was completely neglected by the Supreme Lord.
और ये बहुत जो है समझ में नहीं आया किसी को कि ऐसा क्यों था कि इतने बड़े भक्त को भगवान ने अवहेलना की पूरी रूप से.
कृष्णदास काविराज गोस्वामी जी एक्सप्लेन्स द रीजन.
कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका कारण समझाते हैं.
Because although he was performing such menial humble service and he was so much always chanting the names and the glories of the Lord, in his heart he was thinking that by doing like this I will become God.
क्योंकि वो हालांकि इतनी नम्र सेवा कर रहे थे और राम का नाम जप कर रहे थे, मन में वो सोच रहे थे कि ये करने से मैं भगवान बन जाऊंगा.
He was not doing it truly in a mood of service, but he was doing it with an ultimate mood of enjoyment.
वो सेवा भावना से नहीं कर रहे थे, लेकिन इस भावना से कर रहे थे कि भोग करूंगा.
And Krishna says in Gita, Bhakta mam abhijanati yavan yashasmitatvata. It is only through bhakti, it is only through genuine devotion that I can be known as I am.
और कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि ये सिर्फ सच्ची भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ.
So we must understand that there are two levels in which we have to perform our bhakti.
हमें ये समझना चाहिए कि दो स्तर हैं जिसमें कि हमें अपनी भक्ति के कार्य करने हैं.
Externally, our words and our actions must be suited so that they are very pleasing to our guru and very pleasing to the Vaishnavas and very pleasing to the murti of Lord Krishna.
बाहर रूप से हमारे वचन और हमारे कार्य जो हैं वो इस तरह से हैं कि गुरु को, वैष्णव को और भगवान की मूर्ति को प्रसन्न देने वाले हों.
But internally, we have to be struggling to perform it in a pure state of mind.
लेकिन आंतरिक रूप से हमें जो है संघर्ष करते हुए इसको प्रयास करना चाहिए.
And this is why it is so important that we have very strict and very loyal sadhana.
इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बहुत ही कठोर साधना जो है प्रयास करें.
By regularly hearing the glories of the Lord and chanting the glories of the Lord, our heart becomes purified.
नियमित रूप से भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है.
And then we can render service that is pleasing to the Lord within our heart.
और फिर हम ऐसी सेवा कर सकते हैं जो कि हृदय के स्वामियों को आनंद देने वाली होगी.
We must really be striving to be honest and to be humble.
हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि ईमानदार बने और नम्र बने.
We should not be satisfied with the praise of men.
हमें दूसरों की प्रशंसा से जो है संतुष्ट नहीं होना चाहिए.
We should be satisfied with knowing that we are pleasing Krishna within our hearts.
हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो हमारे हृदय के श्री कृष्ण हैं उनको हम प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं.
One time in Navadvip Dham, there was a very, very famous yogi. Actually, he was a devotee. He was a Babaji. And he was a very, very famous speaker of the Srimad Bhagavatam.
एक बार नवद्वीप धाम में एक जो है बाबा जी थे, वो श्रीमद् भागवत का बहुत जो है मशहूर प्रवचन करता थे.
And thousands of people would go to hear this person speak on the Srimad Bhagavatam.
हजारों लोग उसके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए जाते थे.
So one day some devotees approached a very great saint in our disciplic line, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj.
और कुछ लोग जो है एक बहुत बड़े संत गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए.
And they were telling him how wonderful this person speaks from the Bhagavatam.
और सब प्रशंसा करने लगे, देखो ये कितना अच्छा भागवत पर प्रवचन करते हैं.
Would you like to go to see him?
क्या आप भी उनसे मिलना चाहेंगे?
Gaurkishore Das Babaji said, "This man is a rascal."
वो बोले कि ये जो व्यक्ति है ये बदमाश है.
He said, "Nobody knows it, but at this very moment, he is having illicit sex with a woman."
किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इस समय ये व्यक्ति जो है अवैध स्त्री संग कर रहा है.
He said, "You go to his house right now and you break the door and you see what's there."
आप जाओ घर में दरवाजा तोड़ के देखो क्या हो रहा है.
So the devotees went and sure enough, there he was.
और भक्त लोग गए और बस वही देखा.
And she was also there.
वो भी वहीं पर थी.
So somehow or other, this great devotee, how did he know? Because Krishna in his heart was telling him what Krishna in that Bhagavat reciter's heart was seeing.
उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि जो ये जो गौरकिशोर बाबा जी के हृदय में जो कृष्ण है वो बात को बतला रहे थे जो कि उस ढोंगी के हृदय में जो कृष्ण देख रहे थे.
So we can fool thousands and millions of people, but we can never fool Krishna.
हम हजारों लाखों लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं धोखा दे सकते.
And you cannot attain Krishna's abode by votes.
और कृष्ण के धाम को हम वोटों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते.
There will not be an election at the end of your, at the time of death, there will not be an election to see whether you get enough votes to go back to God.
ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय कोई इलेक्शन होगा कि आपको कितने मत मिल गए, अगर मत मिल गए तो भगवान के धाम जाएं.
It's Krishna in your heart as the Paramatma who have seen everything and heard everything that you've ever said, done or thought. that will decide where you will go.
ये जो कृष्ण जो परमात्मा में है जिनको सब मालूम है आपने कभी कोई चीज सोचा भी है या किया है या बोला है और वो निश्चय करेंगे.
So we should be very simple.
इसलिए बहुत सरल बनना चाहिए.
And we should strive to be very pure.
और शुद्ध बनने का प्रयास करें.
We should not be concerned with anything else.
और किसी चीज से हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए.
Everything else is an illusion.
बाकी सब तो माया है.
And we must perform our duty in such a way on this basis.
इस आधार पर हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए.
Whether you are a doctor or a lawyer or a farmer or a businessman or a housewife or a teacher or a student, whatever your occupation may be, you must know that it should be done in this consciousness of Krishna consciousness.
आपका क्या भी व्यवसाय हो चाहे आप लॉयर हो या डॉक्टर हो या घर में हो या आपको इस भावना से अपना कर्तव्य करना चाहिए.
यत् करोषि राशनाशि यत् जुहोषि ददास्यात् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्. Krishna doesn't say that we should abandon our duties or responsibilities in this world, but he tells us that all that you do, all that you eat, all that you offer and give away should be done as an offering to me.
Krishna Bhagwan ye nahi kehte ki aap apni zimmedariyon ko ya kartavyo ko tyag karo, lekin wo ye kehte hain ki aap jo kuch bhi karte ho, jo kuch bhi khate ho, wo mere liye karo.
And we find in the lives of the great saints, people of all walks of life became perfect because they had this humble, honest Krishna consciousness.
और हम देखते हैं कि महान व्यक्तियों के चरित्र में कि उनके अंदर यह सरल भावना थी इसीलिए वो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके.
मुरारी गुप्ता वाज ए मेडिकल डॉक्टर.
मुरारी गुप्ता जो हैं ये एक डॉक्टर थे.
एंड चैतन्य महाप्रभु सेड बिकॉज़ ऑफ हिज लव फॉर कृष्णा एनीवन हु कंसीडर्स हिम टू बी नथिंग मोर देन अ मेडिकल डॉक्टर विल हैव टू सफर इन हेल.
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि उनका कृष्ण से इतना प्रेम है अगर कोई व्यक्ति उनको साधारण डॉक्टर ही मानता है तो वो व्यक्ति को नरक में सड़ना पड़ेगा.
Because actually he's a pure devotee who's most dear to Krishna.
क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण को अति प्रिय हैं.
And whenever any patient comes to him by his pure devotion, he will heal his body, his mind and his soul.
कोई भी जो है रोगी उनके पास आता है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा उसके मन को शरीर को और आत्मा को ठीक कर देते हैं.
Similarly, Maharaj Yudhishthir, he was king.
Maharaj Yudhishthir ये बड़े राजा थे.
He was a big, big politician.
बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे वो.
But because he performed his work in the service of the Lord, with this humble, simple, and honest devotion to the Paramatma in his heart, he attained the supreme perfection by being king.
और क्योंकि उन्होंने सरल भावना से जो है भगवान के प्रति सेवा भावना से अपना राज्य किया इसलिए उनको जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई राजा के रूप में.
Arjuna was a warrior.
अर्जुन तो एक योद्धा थे.
But because he fought with this simple honest devotion in his heart and all humility, he attained perfection by performing his duty.
क्योंकि उन्होंने सरल भावना से जो है ये युद्ध किया तो अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हुई.
In Chaitanya Leela there was a devotee named Buddhimanta Khan.
चैतन्य लीला में कथा आती है कि एक भक्त का नाम था बुद्धिमंत खान.
He was very wealthy man.
वो बहुत संपत्ति वाले व्यक्ति थे.
And when Chaitanya Mahaprabhu during his leela was to marry the goddess of fortune Vishnu Priya, he said, "I don't want this wedding to be another poor man's Bengali wedding."
चैतन्य लीला में जब उनका विवाह विष्णु प्रिया से होने वाला था तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये किसी एक गरीब ब्राह्मण के विवाह हो.
It should be the most wonderful wedding that anyone has ever seen.
वो सबसे ज्यादा जो है अद्भुत और सुंदर शादी होनी चाहिए जो कि कभी किसी ने देखी हो.
And I will bear all the costs.
और मैं सारा खर्चा करूंगा.
And he spent so much money, lavish money, that the Lord, during the various ceremonies, he was giving so much wealth and charity to everyone.
और उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया सबको दान और संपत्ति दे रहे थे सबको.
He was giving garlands and he was giving cloth and he was giving prasad and so many things and it was so nice that people were coming in the front of the line receiving it then hiding their wealth and then going to the back of the line and they were coming back 2-3 times.
सबको माला दे रहे थे वस्त्र दे सब कुछ और लोग जो है एक बार लेते थे फिर छुपा देते थे फिर से आ जाते थे दूसरी बार.
And some people were angry that these people are cheating.
तो कुछ लोग गुस्सा आ गया कि ये तो धोखा दे रहे हैं.
But Buddhimanta Khan, he said, "No, let them have as much as they want, as many times as they want. No one should be dissatisfied. Even the rogues and cheaters should not be dissatisfied in this wedding ceremony."
बुद्धिमान खान ने कहा नहीं कोई बात नहीं इनको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए जो धोखेबाज लोग हैं उनको भी जो है असंतुष्ट नहीं होना चाहिए.
And Chaitanya Mahaprabhu was giving the Brahmins again and again and again, pretending he didn't remember them.
और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को बार 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 दे रहे थे ऐसे बता रहे थे कि मैंने पहले देखा नहीं है.
And when they saw, when these Brahmins and when these other people saw how charitable Lord Chaitanya was, they became very embarrassed.
जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कितने उदार हैं तो उनको बहुत शर्म से आने लगी.
So in this way we find someone who had such tremendous wealth. He was a perfect devotee because he had such simple, honest devotion.
हम देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति थी फिर भी वो भक्त थे क्योंकि वो सरल भक्ति थी, सरल स्वभाव था.
And also we find in the life of Kolavecha Sridhar, he had nothing, hardly. His clothes were rags. He was living in a thatched hut with holes in the roof that rain would get on him all. He and his whole family were starving.
ऐसे हम श्रीधर कोलावेचा के जीवन में देखते हैं कि वो बहुत गरीब थे. उनके पास घर ऐसा था कि पानी आ जाता था, बिल्कुल भूखे मर रहे थे.
Yet because he would just offer some bananas to the Lord, he achieved the perfection of life.
और वो भगवान को थोड़े से केले अर्पण करते थे, उनको जीवन की पूर्णता प्राप्त
होगी. Because of his honest and simple devotion.
क्योंकि वो सरल और ईमानदार भक्ति थी.
Haridas Thakur, he had absolutely nothing.
Haridas Thakur के पास तो बिल्कुल कुछ नहीं था.
He used to live in caves.
वो गुफा में रहते थे.
With snakes.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
वो जिससे भी मिलते वो उनसे कहते कि आप भगवान का नाम कीर्तन करो.
And as he was chanting, he would induce everyone to chant the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna.
सबसे कहते कि भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
So one time, Haridas Thakur, he came across a snake charmer.
उस समय हरिदास ठाकुर जो है एक व्यक्ति के पास आए जो कि सांपों को मोहित करता था.
And this snake charmer, he had such devotion to Anantashesha that Anantashesha would actually enter into his heart and sing beautiful songs in the glory of Krishna through him.
उसके अंदर ऐसे गुण थे सपेरा के पास कि उसके कारण जो है अनंतशेष खुद उसके हृदय में आकर श्री कृष्ण के गुणगान करते थे.
So one day when he was singing, he was singing the story of Krishna, how he was dancing on the beautiful hoods of Kaliya.
एक बार जब वो गा रहे थे तो वो कथा गा रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान कालिया के सर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं.
And there was a large audience of people listening to this beautiful song.
और बहुत सारे लोग थे जो कि सुंदर गाने को सुन रहे थे.
And when Haridas Thakur heard this about how Krishna was dancing on the hoods of Kaliya and liberating him with the dust of his lotus feet, Srila Thakur Haridas fell into a trance of ecstatic love.
और जब उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर ने कि कृष्ण के बारे में सुना तो वो भगवत प्रेम में विहल हो गए.
He completely lost contact with the material world, and in the ecstasy of Krishna consciousness, he began to roll in the ground and dance in ecstasy, chanting the holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
कृष्ण प्रेम में विहल होके मिट्टी में गिरने लगे और नाचने लगे और भगवान का नाम लेने लगे. हरे
कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
And everyone in the audience was so much impressed that they were all bowing down to Haridas and offering their praise to him.
और वो जो भी जो लोग थे जो देखने वाले वो लोग इतने ज़्यादा जो है उससे प्रभावित हुए कि वो उसको रिस्पेक्ट आदर देने लगे.
And the snake charmer himself, with tears of love in his eyes, he was bowing down and honoring Haridas Thakur.
सपेरा खुद भी जो है आंखों में अश्रु हुए जो है दंडवत प्रणाम कर रहे थे हरिदास ठाकुर को.
So there was one very proud Brahmin who was in the audience.
और उसी श्रोता में एक बहुत अभिमानी ब्राह्मण था.
And after Haridas Thakur left, this person was thinking that if this
low-class untouchable could get so much prestige and so much fame and so much glorification by just falling down and rolling on the ground and chanting God's name, how much if I just do what he did, and I'm a Brahmin, how much people will love me and worship me and adore me and give me charity and praise me.
तो वो ये ब्राह्मण सोचने लगा कि ये तो नीच जाति का व्यक्ति है और ये जो है गिर रहा है और नाच रहा है, इसके कारण लोग इसको इतना आदर दे रहे हैं, और अगर मैं करूँगा ऐसे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो लोग मेरे को और भी ज़्यादा आदर करेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे.
So this person, as the snake charmer was singing the beautiful story of Krishna dancing on Kaliya, he exactly imitated Haridas Thakur. He fell on the ground, then he started rolling around and jumping and chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
And the snake charmer picked up a stick and began to beat him and beat him and beat him and beat him until every limb from head to toe of this Brahmin was completely racked with pain. And then the snake charmer continued to beat him and beat him and beat him till he was rolling in agony and just desperately ran away for his life screaming.
So, वो जो सपेरा था, वो जब उसने देखा कि ये इसके पहले नकल करने लगा, गिरने लगा और नाचने लगा, तो सपेरा को मालूम था, तो वो जो है डंडा लेकर उसको बार 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 मारने लगा और इतना मारने लगा कि उसका जो अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया.
And after he was running and howling and screaming for his life and he was some distance away, again the snake charmer began to sing the beautiful story of Krishna dancing on Kaliya's hoods.
और जब वो चिल्लाते हुए जो है भाग गया वहाँ से, तब फिर सपेरा फिर से जो है कृष्ण भगवान जो है कालिया पर नृत्य कर रहे हैं ये गाने लगे.
So after his performance, the people asked,
उसका पूरा खत्म होने के बाद लोगों ने पूछा,
that why Thakur Haridas, when he did that, you praised him and honored him and glorified him and offered your obeisances to him, and when this Brahmin did the exact same thing, you beat him so mercilessly that he was practically dead.
बोले ऐसा क्यों किया ठाकुर हरिदास, जब वही कार्य कर रहे थे तो उसको तुम प्रशंसा करने लगे, उसको दंडवत करने लगे, और वही कार्य ये ब्राह्मण करने लगा तो तुम उसको ऐसे मारने लगे कि बिल्कुल उसको तुमने जान से ही करीब करीब मार दिया.
He said, when I began to sing the glories of Krishna, my worshipable deity Ananta Shesha actually enters into my heart and guides my every act, my every thought and my every word.
बोले जब मैं भगवान श्री कृष्ण गुणगान करने लगता हूँ तो मेरी पूजनीय मूर्ति अनंत जो है मेरे हृदय में प्रवेश करती है और उसी के द्वारा मेरा हर एक कार्य और हर एक विचार होता है.
हरिदास ठाकुर इज सो हम्बल एंड सो जेंटल. ऑनेस्टली विदइन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही वाज सिंपली ट्राइंग टू गिव प्लेजर टू कृष्ण बाय चैंटिंग हिज होली नेम्स.
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे.
Because he's always chanting the holy names.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna is so pleased with him that he gives him such ecstatic feelings of love.
और क्योंकि जब वो सच्चे उनके अंदर कृष्ण भावना है, इसलिए जब वो गाते हैं तब भगवान उसको भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं.
And Haridas, out of genuine love and compassion, whoever he meets, he invites them, please perfect your life, make your heart pure, make your life perfect by chanting the holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
And Haridas Thakur, नम्रतापूर्वक जिससे भी मिलते हैं उसे कहते हैं अपना जीवन को सिद्ध करो, पूर्ण करो भगवान का नाम लेकर.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
But this other man, he was envious within his heart and he was proud.
जो दूसरा व्यक्ति था वो हृदय से ईर्ष्या कर रहा था और अभिमानी था.
And he had no love or devotion to Krishna.
उसको कृष्ण के प्रति ना कोई प्रेम ना कोई भक्ति थी.
He was a selfish man.
वो स्वार्थी व्यक्ति था.
And he wanted to imitate Haridas for his own fame and for his own sense gratification.
वो अपने यश के लिए और इंद्रतृप्ति के लिए हरिदास ठाकुर की नकल करना चाहता था.
In other words, he came to cheat all of you.
दूसरे शब्दों में वो सब लोगों को धोखा देने के लिए.
And the Lord in my heart could not tolerate seeing this cheater, so he inspired me to beat him till he was almost dead.
और भगवान जो मेरे हृदय में है उन्होंने प्रेरणा दी कि उसको इतना मारो कि जब तक वो मरने के तर पे आ जाए.
निथाय गो प्रेमानंदी
लरी वो.
If you try to cheat Krishna, he will cheat you.
अगर हम कृष्ण को धोखा देना चाहेंगे तो कृष्ण हमें धोखा दे देंगे.
So what we want is to develop real humility, real simplicity and real devotion.
हमें सच्ची नम्रता, सरलता और भक्ति पैदा करने का प्रयास करना चाहिए.
And it is not difficult.
और ये मुश्किल नहीं है.
It is actually the simplest thing.
ये सबसे सरल चीज है वास्तव में देखने जाए.
Srila Prabhupada used to say it is simple for the simple and very difficult for the crooked.
और सरल के लिए सरल है और टेढ़े आदमी के लिए बहुत मुश्किल है.
Why you are laughing?
Because my translation was not crooked translation. Your lecture is simple, but the translation is crooked.
Crooked translation.
Simple lecture.
What does it mean to be simple and what does it mean to be crooked?
सरल होने का मतलब क्या है और टेढ़े होने का मतलब क्या है?
To be simple means without duplicity.
सरल होना मतलब छल कपट नहीं होना चाहिए.
Without ulterior motives.
कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए.
To be crooked means you do something and say something but there's something else in your mind.
कि टेढ़ा होने का मतलब ये है कि आप बोलते एक चीज हो करते और मन में कुछ दूसरा ही विचार है आपका.
So we must learn to be simple.
हमें सरल बनने का प्रयास करना चाहिए.
And this comes by humbly associating with the Lord's devotees.
और ये तब आता है जब हम नम्रता पूर्वक भगवान के भक्तों का संग करते हैं.
By sincerely hearing Srimad Bhagavat, Bhagavad Gita on a daily basis.
रोजाना भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से.
And by regularly, with great attention and regularity, chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
In this way, we can perfect our very lives.
अच्छा. इस तरह से हम नियम पूर्व भगवान का नाम लेने से हम जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
And there is no limitation how the Lord can fulfill all our desires if we have this devotion.
और इसमें कोई सीमा नहीं है. भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं अगर हमारे अंदर भक्ति है.
I would like to end our talk tonight by telling one simple story.
अभी आज की कथा बंद करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहें.
Today is the appearance day of Gadadhar Pandit, who was an incarnation of Sri Radharani in Lord Chaitanya's Leela.
आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीमती राधा रानी है.
When Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Gadadhar Pandit's home, he explained to him that he would soon take sannyas and he would leave Navadvip.
जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए उनके घर में तो बताया कि अभी मैं सन्यास लेने वाला हूँ और नवद्वीप को छोड़ने वाला हूँ.
At that time, the brother of Gadadhar Pandit, who was a great devotee of Gaur Gadadhar, of Lord Chaitanya and Gadadhar Pandit, his brother, he began to weep. He was a simple and honest devotee. And he was saying, my Lord, if you leave and take my brother with you, then my life is finished.
तो उनके जो भाई थे वो बताने लगे कि आप अगर चले जाएंगे तो और आप मेरे भाई को भी साथ ले जाएंगे तो मेरा जीवन बिल्कुल अंत हो जाएगा.
You are my only object of worship and love.
आप ही मेरे पूजा के और प्रेम के पात्र हो.
If the two of you leave, then how will I survive?
अगर आप दोनों छोड़ देंगे तो मैं कैसे जिंदा रह सकूंगा?
Please do not go.
कृपया मत जाइए.
So Lord Chaitanya, he arranged to create beautiful murtis exactly resembling both Lord Chaitanya and Gadadhar Pandit.
तो यह उन्होंने ऐसी मूर्ति बनाई कि जो बिल्कुल गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु की तरह ही दिखाई पड़ती थी, ऐसी मूर्ति बनाई.
In fact, it is said that the Lord himself carved deities of Gaur Gadadhar.
तो गौर गदाधर की मूर्ति है, स्वयं भगवान ने अपने हाथों से वो मूर्ति को बनाया.
And he explained to Vaninath Mishra, the brother of Gadadhar, that these deities are none different than me and Gadadhar.
उन्होंने उनके गदाधर के भाई को बताया, वाणीनाथ मिश्र जिसका नाम था, कि ये मूर्ति मेरे से अभिन्न है.
And whatever you offer, you will see us accepting.
और जो भी आप अर्पण करोगे, आप देखेंगे कि हम स्वीकार करते हैं.
And when you will always have our association and feel our presence in the form of these murtis.
आपको इन मूर्ति के रूप में हमेशा हमारा उपस्थिति और संग मिलेगा.
In this way, there is no limitation to how the Lord can fulfill all the desires of His devotees.
इस तरह से कोई सीमा नहीं है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.
So let us all strive. In whatever occupation we may have, we must strive for this state of consciousness.
हम कोई भी व्यवसाय हो, हमें इस चेतना के लिए प्रयास करना चाहिए.
And we should always take the name of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
In this way, Krishna, from within and without, will always be pleased, and our life will be successful.
इस तरह से भगवान का नाम लेने से भगवान अंदर और बाहर से प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाए.
In this age of Kali Yuga, the Lord has explained that the greatest way to purify ourselves from within and without is by pleasing Him through the congregational chanting of the holy names.
इस कलयुग में भगवान ने बताया है कि उनको प्रसन्न करने के लिए सरल उपाय है कि भगवान का नाम संकीर्तन करना.
Shri Kardamaji will explain how Lord Chaitanya taught us to perform the Sankirtan.